सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी को फरहत नाज का नमस्कार। आधे घंटे हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और याद करेंगे कुछ जानी मानी हस्तियों को। मौसम का हाल जानेंगे, इसके अलावा खेल जगत की खबरों का भी रुख करेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार फरहत एंड वेलकम अलोंग लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। एंड इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर एज फरहत ऑलरेडी टोल्ड यू वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, ऑल्सो मेट्रो सिटी अपडेट्स एंड सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे दैट इज 29th ऑफ दिसंबर। So let us begin with the headlines first, shall we?
जी शगुन, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मन की बात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कई गणमान्य नेताओं से मुलाकात कर उन्हें महाकुंभ मेला 2025 के लिए निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह से मुलाकात की। उन्होंने महाकुंभ का प्रतीक चिन्ह, कलश, कार्यक्रमों का बुकलेट भी प्रदान किया। महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात के चित्र साझा किए और बहुमूल्य समय के लिए सभी गणमान्य व्यक्तियों को आभार व्यक्त किया।
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज इश्यूड अ वार्निंग फॉर कोल्ड वेव कंडीशंस इन नॉर्दर्न इंडिया बिगिनिंग टुडे। इन इट्स फोरकास्ट IMD स्टेटेड दैट मिनिमम टेम्परेचर्स आर लाइकली टू फॉल बाय 3 to 5 डिग्री सेल्सियस ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 डेज ड्यू टू अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नियर पाकिस्तान। The western disturbance is also likely to affect the western Himalayan region from January 1 to 6. Cold wave conditions are very likely in isolated pockets of Himachal Pradesh from today to January 1. These may escalate to severe cold wave conditions in some parts of Himachal Pradesh on December 30 and 31. Punjab and Haryana are likely to encounter cold wave conditions from today to January 3. The IMD has also predicted that Rajasthan will face cold days today. The Srinagar-Jammu National Highway NH44 has been closed due to snow accumulation and slippery road conditions. Vehicular traffic on the highway has been stopped from both directions. Over 1,300 heavy motor vehicles are reported to be stranded in the Kazigund section, Ramban, Udhampur and Jammu. Srinagar Leh Highway and Mughal Road connecting South Kashmir's Shopian district with Rajouri and Poonch districts in Jammu region are still closed due to snow accumulation. Commuters have been advised to undertake journey only after confirming the status of the road from traffic control units in Srinagar and Jammu. Directorate of Health Services Kashmir has established a 24/7 control room at its headquarters in Srinagar to handle any eventualities caused by the recent snowfall.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल अपना अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्प्रेडएक्स लॉन्च करने जा रहा है। एक साक्षात्कार में अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस वर्ष समापन पर इसरो का मिशन ऐतिहासिक रहेगा क्योंकि अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को विलय करने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने का प्रयत्न करेगा। उन्होंने कहा कि स्प्रेडएक्स मिशन अंतरिक्ष डॉकिंग में महारत हासिल करने में सक्षम देशों की विशेष श्रेणी में भारत के प्रवेश को निर्धारित करेगा। उन्होंने कहा कि इस PSLV रॉकेट इस जटिल उपलब्धि को स्वदेशी तकनीक भारतीय डॉकिंग सिस्टम से लैस 2 उपग्रहों को छोड़ेगा।
आकाशवाणी न्यूज ब्रिंग्स यू ग्लिम्सेस ऑफ 2024 इन इट्स स्पेशल ईयर एंडर सीरीज। टुडे वी टेक अ लुक एट द की इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अ रिपोर्ट।
The ministry has consistently advanced fiscal governance and public welfare through innovative financial management and policy reforms. The implementation of direct benefit transfer via the public financial management system has supported the Digital India mission. It enabled real-time transparent fund transfer for over 1,206 schemes in the ongoing financial year. The highlight of this year has been the social security reforms for the government employees with the unified pension scheme, which will be implemented from April next year. It guarantees assured pensions and inflation adjusted vested benefits for retired personnel. Financial inclusion remained the top priority for the ministry, and initiatives like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Mudra and Stand Up India, among others, made significant progress. In the agriculture sector, the ministry has facilitated credit disbursements, with agricultural credit increasing from 8.45 lakh crore rupees in the financial year 2014-15 to 24.30 lakh crore rupees in the financial year 2023-24. Sumit Saha for Akashvani News, Delhi.
यूरोपीय संघ के देशों में स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे के लिए एक समान सी टाइप चार्जर की व्यवस्था कल से लागू हो गई है। इसके साथ ही संघ के सभी 27 देशों में यूएसबी सी टाइप पोर्ट वाले उपकरण उपलब्ध कराना निर्माताओं के लिए बाध्यकारी हो गया है। हेडफोन, स्पीकर, कीबोर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी सी टाइप पोर्ट की व्यवस्था होगी। यूरोपीय संघ का कहना है कि इससे लागत और अपशिष्ट में कमी आएगी और नए उपकरण के लिए नए चार्जर को खरीदना जरूरी नहीं होगा। यूरोपीय संघ में इस कानून को वर्ष 2022 में मंजूरी दी गई थी। और राष्ट्रीय समाचारों के बाद अब रुख कर लेते हैं महानगरों का। तो सबसे पहले शगुन आपसे सुन लेते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी खबर।
यस फरद, फर्स्ट विल फोकस ऑन चेन्नई। To cater the water scarcity in Chennai, Water Resources Department (WRD) aims to transform several lakes in the city and suburbs into drinking water sources. This will ensure a steady supply for the growing population. Officials said that the goal is to add 21,000 million cubic feet of storage capacity, and they are preparing a detailed project report ahead of the next budget session. The proposal includes work for increasing rainwater storage capacity upstream of Chennai by creating new reservoirs, expanding existing water bodies, improving water flow systems, and interlinking water bodies wherever feasible. However, this storage capacity is below the city's annual drinking and industrial water demand of 24,000 million cubic feet, which is expected to rise to 34,000 million cubic feet by 2035. The National Statistics Office, NSO, under the Ministry of Statistics and Programme Implementation, organised a regional training camp for the NSS 80th round of its socio-economic survey at Chennai on 26th and 27th of December. The subjects under coverage in this round are survey on household social consumption, health and comprehensive modular survey on telecom. The NSO and State Directorates of Economics and Statistics will carry out the survey on health jointly for a period of 1 year, starting from 1st January 2025. Dr. K. Chandrasekhar, Deputy Director NSO Chennai, inaugurated the camp on 26th December 2024. In his inaugural address, he highlighted the importance of the health survey data in the compilation of national health accounts and emphasized the pivotal role of surveys in evidence-based policymaking. Now let's focus on Bengaluru. The South Western Railway is operating a special train to Kumbh Mela to cater to the extra rush of passengers. The special express train left Mysuru last night at 12:30 a.m. and it will reach Lucknow Junction at 4 p.m. on 31st of December. The train consists of 20 coaches, including 11 second general class coaches, 7 sleeper class coaches and 2 SLRD bogies. The train is operating one way, connecting Bengaluru, Belgavi, Pune, Ahmednagar, Bhopal, Jhansi and Kanpur Central Junction. The details can be had by dialing 139. Now staying with Bengaluru only, the Bengaluru Metropolitan Transport Corporation, BMTC, will operate public bus services till 2 a.m. on the night of 31st December for the convenience of those celebrating New Year in the city. These bus services will cater to commuters travelling between MG Road, Brigade Road towards various destinations across Bengaluru city. The special services will ensure efficient, reliable, comfortable and affordable transportation during the festivities. The buses will also operate from key bus stations and junction points to ensure smooth and hassle-free travel for all commuters attending the New Year celebrations in Bengaluru. Now let's focus on Hyderabad. The Telangana Legislative Assembly will have a special sitting tomorrow, according to a letter from the Secretariat to all the MLAs. The session will convene at 10 a.m. and has been called for by the Speaker, according to the Legislature Secretariat. The session was called for to pay homage to former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. Staying with Hyderabad, Hydra Commissioner A.V. Ranganath announced that the agency has reclaimed 200 acres of land in Hyderabad. Speaking at a media conference during the release of Hydra's annual report in Hyderabad yesterday, Ranganath highlighted the agency's achievements and ongoing initiatives. He stated that Hydra's actions have significantly increased public awareness regarding illegal constructions in full tank level and also buffer zones. He said people are now more cautious when purchasing new plots and flats. The commissioner revealed that Hydra has so far protected 8 pounds and 12 parks, stating that satellite images are being collected in coordination with NRSE and also using aerial drone images. The commissioner said steps have been taken to geofence government lands. The department is compiling images from 2000 to 2024. So these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now Farhat will be sharing the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata.
जी शगुन, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 45,000 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में दिल्ली के मदर डेयरी दक्षिण क्षेत्र के जोनल प्रभारी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई को आरोपी के खिलाफ वितरण अधिकार को रद्द न करने के लिए 60,000 रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत प्राप्त हुई थी। सीबीआई ने बताया कि शिकायतकर्ता से बातचीत के बाद आरोपी ने रिश्वत की राशि को 60,000 से 45,000 कर दिया था। एजेंसी ने बताया कि आरोपी को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मामले की जांच जारी है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सूची के अनुसार बुराड़ी विधानसभा से रतन त्यागी चुनाव लड़ेंगे, जबकि चांदनी चौक से एनसीपी ने खालिदुर रहमान को मैदान में उतारा है। वहीं छतरपुर से नरेंद्र तंवर और ओखला से इमरान सैफी को टिकट दिया गया है। इस दौरान एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव ने कहा है कि एनसीपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वहीं दिल्ली पुलिस ने राजधानी में नए साल के कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि कनॉट प्लेस में यातायात संबंधी पाबंदियां 31 तारीख को रात 8 बजे से शुरू होकर नववर्ष का जश्न मनाए जाने तक लागू रहेंगी। ये पाबंदी सभी तरह के निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगी। किसी भी वाहन को मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, मिंटो रोड, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग चौराहे, जीपीओ, नई दिल्ली, पटेल चौक और जयसिंह रोड, बंगला साहिब लेन से आगे कनॉट प्लेस की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। कनॉट प्लेस के भीतरी और बाहरी सर्कल में केवल वैध पास वाले वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने इंडिया गेट और उसके आसपास यातायात को नियंत्रित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं बात की जाए अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के साथ साथ गुणवत्ता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया है। श्री फडणवीस ने मुंबई में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कृषि, बिजली उत्पादन, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्रों में महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा जैसी परियोजनाओं पर जोर दिया। थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण 10 से 16 जनवरी तक मुंबई और ठाणे में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में 61 फिल्में अंधेरी, साया, ठाणे के मूवी मैक्स सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। महोत्सव की शुरुआत चीनी फिल्म द ब्लैक डॉग से होगी, जिसने कान फिल्म महोत्सव में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था। इस साल महोत्सव में प्रसिद्ध पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर को एशियन फिल्म कल्चर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पत्रकार रफीक बगदादी को सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड से भी पुरस्कृत किया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। अगले साल जनवरी में गंगा सागर मेला आने वाला है। पश्चिम बंगाल सरकार इसकी तैयारियों में जुटी हुई है और मेला गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के शहरी मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने कल सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की। गंगा सागर मेला 8 जनवरी से शुरू होगा, जो 17 जनवरी तक चलेगा। पूर्ण स्नान 14 जनवरी की सुबह 6:58 से शुरू होकर 15 जनवरी की सुबह 6:58 तक चलेगा। तो शगुन, हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी सुन लिए और महानगरों का भी रुख कर लिया है और दिसंबर जाने में सिर्फ 2 दिन शेष हैं। जी, आने वाला जो साल है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा और बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आएगा जो हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए बेहतर होंगी।
डेफिनेटली। लेट्स होप फॉर द बेस्ट.
जी बिल्कुल. और अब आगे बढ़ते हैं, मौसम का रुख कर लेते हैं. सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की. तो पिछले दो दिन से तो वैसे बारिश देखी जा रही है यहाँ पर, लेकिन मौसम विभाग ने थोड़ी सी राहत देते हुए 31 दिसंबर तक बारिश नहीं होने का अनुमान व्यक्त किया है, लेकिन ठंड में इजाफा हो सकता है. वहीं बात की जाए मुंबई की, तो मुंबई में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. कोलकाता में लेकिन गरज के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. तो शगुन, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कैसा रहेगा मौसम?
Yes, starting with Chennai again, Farhat. Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. There also rain is taking over.
Hmm.
The minimum temperature was 23 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have fog and even mist in the morning and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 18 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have fog and mist, and this would occur in early morning. The temperature will hover between a minimum of 16 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius. And now, news from the world of sports.
The Hockey India League kicked off yesterday with an intense match as Delhi SG Pipers edged past Gonasika 4-2 in a shootout after a 2-2 draw in regulation time. Thomas Domene shone for the Pipers with two penalty corner conversions. Today, Hyderabad Tufans will face Srachi Rad Bengal Tigers in Rourkela, Odisha at 6 PM. Later at the same venue, Surma Hockey Club will take on Tamil Nadu Dragons. Moving on to the world of football, where in the Indian Super League ISL, Jamshedpur FC will take on Kerala Blasters FC in Jamshedpur today. The match is scheduled to begin at 7:30 PM. Yesterday, Hyderabad FC and East Bengal FC shared the spoils with a 1-1 draw. Jackson Singh scored for East Bengal while Manoj Mohammad netted a late equalizer for Hyderabad. In another match, Bengaluru FC trihamed over Chennai and FC 4-2 with Ryan Williams scoring twice. In the world of chess, a controversy has unfolded at the FIDE World Rapid and Bliss Chess Championships as Magnus Carlsen withdrew after being penalized for violating the tournament's dress code by wearing jeans. Deputy FIDE President Vishwanathan Anand is stated that Carlsen's refusal to comply left officials no choice but to unpair him. With Mayur, this is Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
Now let's talk about ice hockey. It is one of the prestigious winter sporting event in Ladakh, organized both by civilian, defense and locals due to its popularity among the masses from the past 3 decades. Series of sporting activities in the field of ice hockey are organized every winter by converting the water bodies into the ice rink, as the prevailing freezing temperatures are made possible manually without any technical intervention. Now, 16 teams, including 6 teams of women, are participating in the CEC Ice Hockey Championship. Final match of the championship is scheduled on 3rd January 2025. During the inauguration, Executive Councillor of Leh Hill Council, Stenzin Chosville, said that the several measures have been taken for the development of sports personnel and infrastructure in the field of ice hockey. He further added that every possible step is on cards by the Hill Council to promote ice hockey in Ladakh. So these were the sports updates.
जी शगुन. और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं. आज है 29 दिसंबर 2024. तो क्या है सबसे पहले आपके पास इतिहास में?
यस फरत, लेट्स टेक आवर लिसनर्स वे बैक इन टाइम. इन द ईयर 1845, टेक्सास बिकेम द 28th स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड इन द ईयर 1911, सुन यात-सेन वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना. And in the year 1937, the Constitution of Ireland came into effect and the Irish, Free State was replaced with the name Ireland.
और शगुन, बात की जाए अगर 1951 की, तो अमेरिका के आणविक ऊर्जा आयोग के अधिकारियों ने आणविक ऊर्जा से बिजली उत्पादन के संबंध में पहली बार खुलासा किया था. वहीं 1972 में कलकत्ता मेट्रो स्टेशन का निर्माण आज ही के दिन शुरू हुआ.
In the year 1975, the historic Sex Discrimination Act was enacted in Britain to render unlawful certain kinds of sex discrimination and discrimination on the ground of marriage and establish a commission to eliminate them and also promote equality of opportunity between men and women.
वहीं 1977 में मुंबई में ओपन एयर थिएटर ड्राइव इन खुला. इसे समय दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर बताया गया. 1998 में कंबोडिया पर 1975 से 1979 के बीच नियंत्रण करने वाले कट्टरपंथी कम्युनिस्ट संगठन के नेताओं ने उनके शासन के दौरान तकरीबन 15 लाख लोगों के मारे जाने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी।
In the year 2015, Guinea was declared free of Ebola by the World Health Organization 2 years after the deadly virus spread in the country.
और अब आइए हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे जानी मानी हस्तियों को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना ने लगभग 163 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें 106 फिल्मों में वे मुख्य नायक रहे। राजेश खन्ना को 3 बार फिल्मफेयर पुरस्कार मिला और 14 बार वो नामांकित भी हुए। वर्ष 1971 राजेश खन्ना के अभिनय करियर का सबसे यादगार साल रहा, क्योंकि इस वर्ष आई उनकी फिल्म कटी पतंग, आनंद आओ मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी और अंदाज।
Yes, Farhat, reflecting back on his journey a bit, Rajesh Khanna's entry into the film industry was remarkable. He won the All India Talent Contest in the early 1960s, defeating thousands of contestants. This victory marked the beginning of his illustrious career. He debuted in 1966 with Aakhri Khat, and this film showcased his potential as a talented actor. And the turning point in his career came with Aradhana, where he starred opposite Sharmila Tagore, and the film became a blockbuster. And his portrayal of a romantic hero won the hearts of millions.
बिल्कुल शगुन, बहुत ही खूबसूरत जो है फिल्म थी, उसके साथ उसके जो गाने थे वो आज भी लोगों के दिल में ऐसे बसे हुए हैं, बस सुनने का मन करता है।
जी,
और इसके अलावा दो रास्ते, दुश्मन, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, जोरू का गुलाम, अनुराग, दाग, नमक हराम, हम शक्ल के रूप में हिट फिल्मों के जरिए उन्होंने बॉक्स ऑफिस में कई वर्षों तक जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को गुलजार रखा। भावपूर्ण दृश्यों में राजेश खन्ना के सटीक अभिनय को आज भी याद किया जाता है।
जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट शिवराज रामासेशन, साइंटिस्ट वेल नोन फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। He served as director of the Indian Institute of Science. As an expert in crystallography, he established the multi-wave X-ray scattering method for the determination of phases of reflection, partial structure factors of binary liquids and glasses, and static displacements and polarization vectors. He was the first one to establish material science laboratory in India. He was awarded the Padma Bhushan in 1985. Apart from this, he is a fellow of the 3 Indian Science Academies and has served as editor of Brahman, Journal of Astrophysics, Astronomy and Resonance.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय फिल्म निर्देशक रामानंद सागर का। रामानंद सागर सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण बनाने के लिए जाने गए। रामानंद सागर का झुकाव फिल्मों की ओर 1940 के दशक में था, लेकिन उन्होंने बकायदा फिल्म जगत में उस समय एंट्री ली जब इन्होंने राज कपूर की सुपरहिट फिल्म बरसात के लिए स्क्रीन प्ले और कहानी लिखी। भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के बाद वर्ष 1950 में रामानंद सागर ने एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा सागर आर्ट कॉरपोरेशन। और बाद में इन्होंने इंसानियत, कोहिनूर, आंखें, ललकार, चरस, आरजू, गीत और बगावत जैसी हिट फिल्में बनाई।
वेल हिज शो हिज बेस्ट नोन फॉर मेकिंग दिस टेलीविजन शो रामायण, एंड दिस शो फरत दिस वेंट ऑन टू बिकम अ मैसिव सक्सेस वेरी क्विकली, एंड सो ग्रेट वाज इट्स पॉपुलैरिटी दैट एवरी संडे मॉर्निंग व्हेन इट वाज एयर्ड पीपल वुड शट शॉप्स, बेथ एंड गार्लिन देयर टीवी सेट्स बिफोर द शो बिगन। सच वाज द डिवोशन ऑफ द व्यूअर्स टुवर्ड्स इट।
बिल्कुल, उनके एक एक जो कैरेक्टर था वो ऐसा लगता था कि हुबहू जो है वो उतर कर सामने आ रहा है, और उस चीज को आज भी लोग जो है वो याद करते हैं।
राइट,
और अगर आगे बढ़ें तो हम बात कर लेते हैं दीनानाथ मंगेशकर की। मराठी रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता, गायक, शास्त्रीय संगीतज्ञ और नाट्य संगीतकार रहे दीनानाथ मंगेशकर। वे गायिका लता मंगेशकर, आशा भोसले, मीणा खड़िक्कर और संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर के पिता भी थे। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अप्रैल को यानी मास्टर दीनानाथ के स्मृति दिवस पर आयोजित किए जाने की एक परंपरा भी रही है। इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि अपनी सुरीली आवाज से बॉलीवुड को कई सुपरहिट गाने देने वाली लता मंगेशकर को गायिका की जो प्रेरणा थी वो उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर से ही मिली।
Yes, and he was a prized addition to the tradition of singing shared by Bal Gandharv and Keshav Rao Bhosle. However, he had his own independent style of singing and contributed to Marathi musical dramas in several ways, and such as introducing elements of Punjabi style in them. Mangeshkar essayed both male and female roles, with some leaving an indelible impression on his audiences. He performed at concerts and mehfils as well as at All India Radio's Mumbai Center.
और आज ही के दिन हमें अलविदा कहा था राष्ट्रीय विचारधारा के समर्थक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम अजमल खान ने. हकीम अजमल खान अपने समय के सबसे कुशाग्र और बहुमुखी व्यक्तित्व के रूप में प्रसिद्ध हुए. भारत की आजादी, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय रहा. वे एक सशक्त राजनीतिज्ञ और उच्चतम क्षमता के शिक्षाविद थे. हकीम अजमल ने यूनानी चिकित्सा की देशी प्रणाली के विकास और विस्तार में काफी दिलचस्पी ली. हकीम अजमल खान ने शोध और अभ्यास का विस्तार करने के लिए तीन महत्वपूर्ण संस्थाओं का निर्माण करवाया. दिल्ली में सेंट्रल कॉलेज, हिंदुस्तानी दवाखाना और आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज. और इस प्रकार भारत में चिकित्सा की यूनानी प्रणाली को विलुप्त होने से बचाने में उन्हें मदद मिली.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिस्टीना रोसेटी. राइटर, शी मेनली रोट इन थ्री जॉनर्स, नेमली रोमांटिक, डिवोशनल एंड चिल्ड्रंस पोएम्स. शी ऑथर्ड न्यूमरस बुक्स ऑफ पोएट्री इंक्लूडिंग गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स इन द ईयर 1862, वे बैक, द प्रिंसेस प्रोग्रेस, अ पेजेंट एंड द फेस ऑफ द डीप. She also wrote the words of two Christmas carols and very well-known pieces, In the Bleak of Midwinter and Love Came Down at Christmas.
और शगुन, भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो है वो एक अलग ही क्रेज रहा है. बहुत सारे ऐसे गायक पैदा हुए जिन्होंने एक से बढ़कर एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गीत हमें दिया, और इसलिए हम आज याद कर रहे हैं पंडित ओंकारनाथ ठाकुर को. इनका संबंध ग्वालियर घराने से था. पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का जितना प्रभावशाली व्यक्तित्व था, उतना ही असरदार उनका संगीत भी. एक बार महात्मा गांधी ने उनका गायन सुनकर टिप्पणी की थी कि पंडित जी अपने मात्र एक रचना से जन समूह को इतना प्रभावित सकते हैं जितना मैं अपने अनेक भाषणों से भी नहीं कर सकता. उन्होंने एक बार सर जगदीश चंद्र बसु की प्रयोगशाला में पेड़ पौधों पर संगीत के स्वरों के प्रभाव विषय पर अभिनव और सफल प्रयोग भी किया. जब वे सूरदास का पद मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी गाते थे तो पूरे श्रोता समुदाय की आंखें जो थी वो आंसुओं से भीग जाती थी, और इस पद को गाते समय पंडित जी साहित्य के सभी रसों से साक्षात्कार कराते थे. पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की कालजी रचनाओं में एक महत्वपूर्ण रचना थी वंदे मातरम. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना स्वतंत्र भारत के प्रथम सूर्योदय पर पंडित जी के स्वरों से अलंकृत होकर रेडियो से प्रसारित हुई थी. आगे चलकर वंदे मातरम गीत के आरंभिक दो अंतरों को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगीत के समक्ष मान्यता प्रदान की थी. तो ये तो थे जो हमने आज याद किया इन सारी हस्तियों को. और
फरद, बिफोर लीविंग लेट्स जस्ट अपडेट आवर लिसनर्स अबाउट टू मोर हैपनिंग्स.
जी,
एन एयरक्राफ्ट कैरिंग 181 पीपल हैज क्रैश्ड एट एन एयरपोर्ट इन साउथ कोरिया, किलिंग एटलीस्ट 28 पीपल. द एयरक्राफ्ट ड्रोव ऑफ अ रनवे एंड क्रैश्ड इनटू अ वॉल एट मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द साउथ वेस्ट ऑफ द कंट्री. The Jeju airplane was reportedly flying back from Bangkok in Thailand, and the accident took place while it was landing. One person has been found alive as the rescue mission continues. The cause of the crash is unclear, but a bird strike may have caused the landing gear to malfunction. Moving on, BJP President JP Nadda has accused the Congress of indulging in political gimmicks over the demise of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. In a statement, Mr. Nadda alleged that the Congress party is using Dr. Manmohan Singh's name for political gains. Mr. Nadda highlighted that the Prime Minister's museum was established by the NDA government to honour all Prime Ministers of the country. He accused Congress of focusing only on building memorials and monuments for members of their own family. Now, again, let's focus on cricket. Australia was 63 for 2 in their second innings against India on the fourth day of the fourth test of the Border Gavaskar Trophy in Melbourne when reports last came in. India resumed their first innings at the overnight score of 358 for 9 this morning, but they bowled out at a score of 369.
जी, और ये तो सारी थी खबरें, और आधे घंटे जो है हम अपने श्रोताओं से जुड़े रहे शगुन. और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि अब सिर्फ मात्र दो दिन बचे हैं और नए साल की ओर हम प्रवेश कर जाएंगे, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो टाटा रतन जैसे जो लोक शख्सियत थी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जैसी शख्सियत ने हमें यहां से अलविदा कह दिया. और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा आने वाला जो साल होगा वो बहुत बेहतर साबित होगा सभी के लिए.
Yes, filled with happiness and success for everybody.
जी बिल्कुल, और हर क्षेत्र में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो आगे बढ़ें, और बहुत सारी जो नकारात्मक चीजें हैं जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गया और जो रिश्तों को जो अहमियत देना है वो भूलते जा रहे हैं, वो सारी चीजें वो लोग दोबारा से लेकर आए और एक रेजोल्यूशन ले नए साल का कि हाँ हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे लोगों के लिए और अपनों से मुलाकात जो है वो करते रहेंगे.
फरत ऑल्सो टेक द रेजोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग दैट रेजोल्यूशन.
जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग रेजोल्यूशन तो बहुत बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो जो है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं.
Yes.
तो इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का. हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा. अगर आप हमारे कार्यक्रम को आज नहीं सुन पाए हैं और दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.nic.in पर.